सुबह के वक्त मौसम अच्छा था, मैंने इनको बाहर रख दिया, उठे नहीं।
अब्बू,
क्या बात है बेटा?
अंडा बनाऊं आपके लिए? एक ही?
नहीं बेटे, मैं पनीर खाऊंगा। तुम जब बना ही रहे हो तो अपनी बहनों के लिए भी बना लो।
मैं क्यों बनाऊं? उनको जरूरत हुई तो खुद बना ले, वरना बिगड़ जाएंगे।
समाना, समाना बेटे, उठो भाई, 7 बज गए। मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर किस लिए घड़ी में अलार्म लगाती
है। मैं रात 2 बजे तक जागती रही हूँ।
रात को 2 बजे तक तो मैं जागती रही हूँ। प्लीज अब मेरे सराहने बैठ कर कॉन्फ्रेंस ना दें।
आप उठ भी जाओ, देर हो जाएगी।
अम्मी, अगर अंडा चाहिए हो तो खुद ही बना लीजिए।
नहीं बेटे, मैं नहीं खाऊंगा।
अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम
अस्सलाम। अम्मी, मैं जा रही हूँ, देर हो रही है।
क्लास तो 8 बजे से है, बैठो कुछ खा लो।
नहीं भाई, इस रश में नहीं पहुँच पाऊंगी।
बैठो, नाश्ता कर लो, मैं खुद किसी जगह तक पहुँचा दूंगा।
तो फिर 7 तीर स्क्वायर तक?
मैंने कहा पहुँचा दूंगा ना, जगह का तय मत करो, बैठो।
ये लो बेटी।
खाना चाहती हो तो खुद ही बना लो ना।
नहीं, मुझे देर हो रही है। ऐसे खाते है कि दूसरा का दिल भी मचलने लगता है। कितना मजेदार भी है। मेरे ख्याल से दुनिया का वाहिद काम है जो नीमा कर सकता है।
मैंने कहा था ना कि अगर चाहिए तो खुद ही बना लो।
मैंने भी कहा मुझे देर हो रही है, नहीं बना सकती।
सारे हाफ फ्राई अंडे तो खा लिए, अब खुद ही जाओ ताकि देर से पहुंचो।
बड़े बेहुदा इंसान हो तुम।
मैं या तुम?
जाहिर है तुम। क्या तुमने नहीं कहा था मुझे पहुंचा दोगे? मैं भी तुम्हारे कहने पे बैठी रही।
मैं कपड़े तब्दील करने जा रहा हूँ।
उफ़, इसके सारे काम ऐसे ही हैं। कभी किसी को पहुंचाना क्या होता है कि इतना नखरे करता है और दूसरे को तकलीफ देने लगता है।
ओहो समाना, क्यों शोर मचा रही हो?
सॉरी,
मैं सो रही हूँ। हाँ
अरे, अभी तक यहीं खड़ी हो?
वो उस्ताद जिनके साथ आज क्लास है वो बड़े बदअखलाक हैं। अगर 5 मिनट भी देर से पहुंची तो क्लास में नहीं आने देंगे।
अच्छा कोई बात नहीं, तुम किराए दे दो, मैं खुद ही पहुंचा दूंगा।
ज्यादा नखरे मत दिखाओ नीमा।
नखरा कैसा, मैं कह रहा हूँ अपना किराया दो, मैं पहुंचा दूंगा।
अगर मुझे किराया ही देना होता तो टैक्सी बुक करा लेती।
मैं टैक्सी वाला?
क्या मतलब?
नीमा बेटे,
सिर्फ अम्मी की खातिर जा रहा हूँ।
शाबाश मेरा अच्छा बेटा, उसको यूनिवर्सिटी तक पहुँचा दो।
यूनिवर्सिटी तक?
हाँ बेटा, जाओ जाओ, जीत रहो।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
आहिस्ता जाना।
खुदा के लिए छोड़ भी दो, इतने बरसों से ये काम कर रही हो, अब मुझ पर चोट भी असर नहीं करती है।
इतना खुद पे इत्मीनान ना रखें, कहिए इंशाल्लाह।
अच्छा ठीक है,
इंशाल्लाह
इंशाल्लाह।
अबू, आप भूल तो नहीं जाएंगे?
जी ठीक है, बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे।
क्या कहा?
प्राइवेट है, बताइएगा।
अरे नहीं भाई।
अरे कितने तेज कान है, अब क्या काम हो गया?
बहारे है ना, आप अगर इजाजत दे तो हम जाएं।
खैरियत से जाइए।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिह।
खुदा हाफिज।
जनाब खुदा हाफिज।
मैं भूलूंगा नहीं। अच्छा
कोई बात नहीं, शुक्रिया
जी। मैं इस वक्त बैंक में हूँ। अफशार साहब ने मुझसे बिल्डिंग की तरफ चक्कर लगाने का कहा है। हाँ बहुत अच्छे। आप बिल्डिंग के कैटलॉग मेरे आने तक उनके सामने रख दें, उनको देखते हैं। हाँ खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम।
अमीरी साहब आपके मेहमान।
हाँ शुक्रिया।
कोई बात नहीं।
रजा कैसे हो?
सलामुअलैकुम।
सलामुअलैकुम, क्या हाल है?
कैसी बात?
माफ करना तो मैं इंतजार करना पड़ा।
आपको तकलीफ देने आए हैं। मुर्तजा ये वही कॉम्प्लेक्स है ना? है ना?
हाँ ये वही है।
इसका ढांचा गार्डर का बना हुआ है या
कमरे में? चले फिर बताता हूँ तुम्हें। बीवी बच्चे कैसे हैं तुम्हारे?
बहुत सलाम कह रहे थे, वो आपके एहसानमंद हैं।
माफ करना जरा चाय का ऑर्डर दे दे। रजा माफ करना, खुद चीनी नहीं खाता हूँ इसलिए मालूम नहीं मैंने शक्करदान कहाँ रख दिया।
मुर्तजा भाई इसको छोड़ दे।
हाँ मिल गया मुझे, मिल गया। माफ करना जरा, वाकई एहसान जताने वाली बात नहीं है क्योंकि ये ऐसी सहूलत है जो कंपनी के मुलाजमीन को दी गई है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं घर को ले लेता, लेकिन नहीं है। तुम घर के मालिक बन जाओ, इससे बेहतर क्या होगा।
शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भुलाऊंगा। अलबत्ता मुर्तजा भाई आपको पता है मैं इन बातों को नहीं मानता हूँ। मैं पैसे के जरिए रोज़ाना बहुत काम करता हूँ लेकिन बच्चों का दबाव है। बीवी कह रही थी किराए के मकान में रहने से हम थक गए हैं, घर लेना ही पड़ेगा वरना।
अच्छा रजा, क्या तुम 100 मिलियन का बंदोबस्त कर सकते
हो? हाँ, मेरे मरहूम ससुर याद है ना?
हाँ
जानते हो ना, फौत हो गए, वो विरासत में जमीन छोड़ गए हैं।
वो तो विरसे में शामिल थे।
लेकिन आप तो मुझे जानते हैं, मैं इन कामों में बहुत माहिर हूँ। मैंने आगे बेचा और उसके नकद पैसे तैयार हैं।
अच्छा ये तो ही 100 मिलियन की बात, लेकिन याद रखना 20 महीनों के अंदर तुम्हें 5 मिलियन के 20 चेक पास करवाने हैं। कर सकते हो?
हाँ आपको हक पहुँचता है कि तश्वीश का इजहार करें। बहरहाल माहाना 5 मिलियन कोई कम पैसे नहीं है, लेकिन आपको मालूम है कि मेरा असली काम, अगर मैं किसी वक्त कहीं फंस भी गया तो हर महीने 5-6 गाड़ियाँ मेरे हाथ में होती हैं, इनमें से एक को बेच दूंगा।
अच्छा बहुत अच्छा, तो फिर मैं बेफिक्र रहूँ ना?
बिल्कुल बेफिक्र रहें।
रजा तुम यहीं बैठो, मैं दफ्तरी कार्रवाई निपटा के आता हूँ, तुम फिर दस्तखत कर देना, ठीक है?
ठीक। अंडे खाओगे?
आप खाइए।
भाई मैं क्या करूँ, मैदे की वजह से मजबूर।
अलबत्ता कहते हैं अगर काली मिर्च इस पर छिड़केंगे तो मैदे के लिए बहुत अच्छी है।
तुमने कहा, तुम्हारा क्या लगता है?
खालाजत भाई का बेटा है।
देखो अगर उसका चेक पास ना हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उस सूरत में तुम जानो और माली सिस्टम।
नहीं आप बेफिक्र रहें बिल्कुल।
उसके पास नकद कितने हैं?
100 हैं।
कितने मीटर चाहिए उसको?
बाल बच्चों वाला है, 80 मीटर काफ़ी होगा।
उससे कहो कि 60 मीटर वाला खरीदे, इस तरह किस्में भी जल्दी आ जाओ जाएंगी।
मैंने आपसे कह दिया ना कि मैं खुद उसकी जमानत देता हूँ।
ठीक है उससे कह दो एग्रीमेंट बना ले, मैं पैसे दे दूँगा।
शुक्रिया नवाजिश।
तुम्हें जितने फ्लैटों का खरीदार मिलेगा उसका भी तुम्हें फीसद मिलेगा, लेकिन उस खरीदार ने आम तरीके से हटकर फ्लैट खरीदा है लिहाजा तुम्हारा कोई कमीशन नहीं है।
कोई मसला नहीं है, बस इस बंदा खुदा और उसके बीवी बच्चों को सर छुपाने की जगह मिल जाए। खुदा आपका भला करें। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
अभी अभी आई हैं।
बाहर है।
अस्सलामुअलैकुम अब्बू जान।
वालेकुम अस्सलाम। खुदा की कसम मैंने सोचा तुम भूल गई हो, नहीं आओगी। मैं बहुत खुश हुआ।
मैं भूल जाऊं? ये हो ही नहीं सकता।
देखो मेरे एक मेहमान आए हुए हैं, उनको फारिग करके आता हूं।
हुँ?
एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं हल्याज से बेफिक्र हूँ।
हफ्ते के दिन आके कागजात पर दस्तखत कर दो, काम तमाम हो जाएगा।
बहारा बेटी, क्या हाल है आपके?
बहुत शुक्रिया, ठीक
हूं। अम्मी का क्या हाल है?
अम्मी भी ठीक है।
नीमा मियाँ, समाना बेटी,
सब ठीक हैं।
सबको सलाम कहना।
तुम भी सबको सलाम कहना।
एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया।
ओके, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।
खुदा हाफिज।
चलो चलते।
रजा साहब यहाँ क्या कर रहे थे?
कुछ नहीं।
इस तरह के अपार्टमेंट्स जिनके बारे में पता नहीं होता कब तैयार होंगी, इसी तरह के लोगों के काम आती हैं।
बेटी, अब हमें कहाँ जाना है?
पासदारन चौक से ऊपर, वहाँ हर कीमत का मिल जाता है।
इस वक्त हमें आपके इशारों पर नाचना पड़ेगा। आओ चलें। ओह, टैक्सी भी बुक नहीं की। बेटा, अगर नाराज ना हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जगह जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की शरायत और कीमतें क्या हैं?
मुझे मालूम है कि आपका दिल धक धक कर रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी परेशान ना हो।
बहरहाल बेटी, वहाँ की कीमतों के बारे में तकरीबन अंदाजा तो किया जा सकता है ना?
ये डीलर नगीम के खाविन के जाने वाले हैं। ये घर जिसमें वो रह रही है उन्हीं ने ढूंढा है।
तो यहाँ भी नगीम बेगम के कदमों के निशान पाए जाते हैं?
वो बेचारी मदद करना चाहती थी, इसमें कोई हर्ज है?
नहीं नहीं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन बात यह है कि एक डीलर पगड़ी के पैसे या किराए को किस हद तक ज्यादा या कम करा सकता है?
आखिर इन डीलरों के पास ऐसी जगह होती हैं जो खास लोकेशन की होती हैं।
बेटी, बहरहाल उसकी पगड़ी कितनी है इतना तो मुझे बताओ।
पहले आप इस जगह को देख तो लें, जल्दबाजी ना करें।
ठीक,
हेलो, अभी मैं करज में हूँ, मेरे साथ मुसाफिर है, नहीं आ सकता। भाई मैं मसरूफ हूँ। अच्छा, मुझे याद रहेगा, उससे कह दूंगा। खुदाफिज।
नीमा, कहाँ जा रहे हो?
वापस आऊंगा।
कब आओगे?
एक घंटे में वापस आ
जाऊंगा। जल्दी आना, गाड़ी नहीं है।
कल कितने बजे तय हुआ? एक मिनट, माफ करना दोस्तों। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
सलाम वालेकुम मिस महसा, क्या हाल है?
मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो?
मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है, नजर नहीं आती? आज तो बहुत ही खूबसूरत कोट पहना हुआ है।
दोस्तों माफ करना।
कोई बात नहीं,
मगर मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यूनिवर्सिटी मत आना।
बात यह है कि कल मैंने कई दफ़ा फ़ोन किया, बंद था, परेशान हो गया ना।
कोई ख़ास काम था?
कोई ख़ास काम तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा अगर आकर तुमसे मिल लूँ, और अगर भी क्लास नहीं है तो साथ चल के कुछ खा पी लें।
नहीं, मुझे कुछ काम निपटाने हैं, मुझे जुमेरात की रात के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि तय ये हुआ है कि तुम लोग हमारे घर रिश्ता मांगने के लिए आओगे।
क्या?
तुम्हारी एक साल की मोहलत अब ख़त्म हो गई है, मेरे अब्बू ने कहा है कि अब रिश्ता मांगने आना चाहिए।
लगता है तुमने एक एक दिन का हिसाब रखा है।
तो फिर जुमेरात की रात फिक्स है।
फिक्स है,
चलिए।
देख रहे हैं कैसा महल्ला है, सुनसानों कोई शोरगुल नहीं। ये ही बिल्डिंग है,
तकरीबन नई है।
हाँ,
अब ये बताओ बेटी, कितने मीटर का है?
मैंने देखा है, बहुत बड़ा है। आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा।
अब ये बिल्डिंग इस मोहल्ले में
इस... मैंने कहा ना कि ये खास जगह है, इसका मालिक भी बाहर है।
अब ये बताओ इसकी कीमत कितनी है?
अभी जाकर देख ले।
कौन है?
अस्सलाम वालेकुम, माफ कीजिएगा, हम पांचवी मंजिल के घर को देखना चाहते हैं।
तशरीफ लाइए।
बहुत शुक्रिया।
तशरीफ लाइए।
आइए।
हालांकि इसमें अभी काम चल रहा है, तशरीफ लाइए।
चलो
आइए अब्बू जान, इसके टेरेस को देखें। अरे वाह वाह, देखें क्या मंजर है। आप काम से वापस आके एक घंटा यहाँ बैठेंगे, आपकी तबीयत तरोताजा हो जाएगी। हमारे घर की तरह नहीं है लेकिन फिर भी अच्छा है।
जी हाँ,
इसका बावर्ची खाना बहुत स्टाइलिश है। एक दो बर्तन होते हो तो वो भी व्यू बहुत अच्छा लगेगा। और सबसे अहम बात ये कि महल्ला बहुत अच्छा है और बहुत महजब लोग हैं।
मतलब सब पैसे वाले हैं? अच्छा बेटी, हमें कितनी पगड़ी देनी पड़ेगी?
अब्बू यकीन करेंगे, मैंने 15 मिलियन कम करवाए हैं।
शाबाश, कब से तुम्हें बाप की जेब का ख्याल आया है?
मुझे हमेशा आपकी जेब का ख्याल रहा है।
अच्छा, बहरहाल कितना पैसा देना पड़ेगा?
70 मिलियन पगड़ी।
70 मिलियन? कुछ मालूम है तुम क्या कह रही हो? फजूल बात। इस घर की जो 30 मिलियन की पगड़ी है, उसको वापस लेने के बाद अगर बड़ी तगड़ों से 10 मिलियन का बंदोबस्त कर सका तो इनमें मिलाऊंगे तो 40 मिलियन बनेंगे। वो तुमने तो कहा था कि 30 मिलियन में यहाँ 4 बेड का घर ले सकती है, तो ये था वो? तुम कहती थी कि 70 मिलियन, इसमें से 40 मिलियन कहाँ से लाऊं? आखिर 30 मिलियन है।
यानी आप इतना शोर शराबा 30 मिलियन के लिए कर रहे हैं?
इसलिए तुम नहीं समझ रही हो कि 30 मिलियन का मतलब क्या?
आप चाहें तो ये घर ले सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि आपका दिल नहीं चाहता।
क्यों?
आपने खुद ने तो कहा कि 100 मिलियन का बंदोबस्त कर लिया है, तो क्या है इस पैसे में 30 मिलियन पर भी हमारा हक नहीं? यकीन सारे पैसे नीमा साहब की जेब के लिए हैं।
वो फैक्ट्री तुम सब की है ये जान लो।
अगर मीरास की बात है तो 2 हिस्से बेटा लेता है और 1 हिस्सा बेटी।
शर्म करो, वाकई अभी तुम इर्स और मीरास की फिक्र में पड़ गई? खुदा मुझे मौत देता आगे तुम सबको चैन आ जाए।
अब्बू, इसकी खास लोकेशन खास महल है।
खास लोकेशन कामिल तो हमारा घर है, क्योंकि अगर उसका मालिक हमारा वाकिफ और रिश्तेदार ना होता तो हम 30 मिलियन में इतने बड़े घर को पगड़ी पर नहीं ले सकते थे। तुम ये बात क्यों नहीं समझती हो? और फिर हमें शुक्र करना चाहिए कि वो दूसरे मुल्क में रहता है, वरना हर महीने की पहली को हमारे सर पर सवार रहता वो। बेटी, इस घर को तुम्हारी अम्मी ने इतने सलीके से सजाया है, उसकी कदर करो, कुछ सब्र और बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करो, इंशाल्लाह अगर ये वर्कशॉप चल पड़ी तो हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, घर तब्दील कर लेंगे।
बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त, आखिर कब तक? 1 साल 2 साल? अब्बू, मेरे मुस्तकबिल के बारे में भी सोचें।
घर का तुम्हारे मुस्तकबिल से क्या ताल्लुक है?
यही तो मसला यहीं पर है, आप समझते नहीं हैं।
मैं नहीं समझता?
माफ करें, मतलब आप तवज्जो नहीं दे रहे।
ओहो, मैं तवज्जो नहीं दे रहा? हाँ, तवज्जो नहीं दे रहा। मैं तवज्जो नहीं दे रहा?
इस बात की बहुत अहमियत है कि इंसान का घर कहाँ है। आपके लिए अहम नहीं होगा क्योंकि आपकी उम्र बीत गई है, आप रिटायर हो गए हैं और आपकी 3 औलाद हैं, एक शरीफ और मेहनतकश बीवी है, लेकिन हमारे लिए अहम है वही रिश्ता मांगने वाले जिनके आप मुंतजर हैं। उनके लिए अहम है कि हम कहाँ रहते हैं, किस इलाके में रहते हैं। आपको मेरी फिक्र नहीं है ना? सही, कम अज कम बेचारी समाना का तो ख्याल करें।
जिस मर्द की अक्ल उसकी आंखों में हो, मैं नहीं चाहता मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आए।
अरे भाई, अब तो तमाम लोगों की अकलें उनकी आंखों में हैं, अब सब लोग जाहिर को देखते हैं।
अच्छा, तुम जाहिर को मत देखो।
भाई मत बैठे, टूट जाएगा।
तुम्हारी अकल आंखों में नहीं होनी चाहिए।
क्या कह रहे हैं आप? आपको किस चीज का पता है? हमारे किस चीज के बारे में आपको मालूम है? गली से घर पहुंचते पहुंचते तक कितने लोग हमारे पीछे लग जाते हैं, जिनमें से 2 तो छोड़ते ही नहीं है। मेरे ख्याल में आपको बिल्कुल भी अपने बच्चों के अमन और सुकून की परवाह नहीं है और सिर्फ अपने सुकून की फिक्र है।
बाहर है, बाहर है बेटी, बाहर है बेटी। सड़क पर बुरी बात है, नाराज ना हो तुम, घर में चल के सुकून से बात करते हैं ना, ठीक है?
क्या फायदा, अब तक हजार बार कह चुकी हूँ कि अब्बू अपने बेटे के बारे में सोचे,
बहुत अच्छा,
उनके मुस्तकबिल की फिक्र करें। किसी ने सुनी, किसी ने अहमियत दी? आप भी मुझे अपने हाल पे छोड़ दें।
माफ कीजिए,
कोई बात नहीं,
माफ कीजिए, वो मेरी बेटी है, ये लीजिए, जहां पर वो जाना चाहे उसको पहुंचा दें।
मैं आपको फोन करती हूँ तो कहती है मैं नहीं आ सकता।
बात ये है कि जब भी आप मुझे फोन करती है मैं मसरूफ होता।
आपको चाहिए इस कंपनी के लिए भी काम करें, यही तय हुआ था।
अस्सलाम
वालेकुम। सलाम।
कोई मसला पेश है?
मसला मैं क्या अर्ज करूँ, बाज़ाहिर हम कंपनी के कामों के सिलसिले में नीमा साहब पर भरोसा नहीं कर सकते।
आप फिलहाल इस मसले के बारे में अफशार साहब को कुछ ना बताएं, मैं खुद कुछ करता हूँ इस बारे में।
जी अच्छा, वैसे अमीरी साहब, अफशार साहब ने कहा कि आप ब्लॉक नंबर 2 के हिसाब किताब उनको जाकर दे दें। शुक्रिया।
तुम इधर आओ। इधर आओ
जी।
बिलाखिर तुम यहाँ काम करना चाहते हो या नहीं?
जाहिर है काम।
अच्छा तो फिर क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं काम करते हैं? सेक्रेटरी ने 10 मरतबा तुम्हें फोन किया बुलाने के लिए, किसी चीज को पहुंचाना था, लेकिन तुम गायब। मुझे फोन करके कहा कि तुम्हें ढूंढ के लाऊं, ये क्या है आखिर?
ठीक है, काम पेश आ गया था, मैं बाहर गया।
अरे
था।
काम वो है या ये है?
ये है ना, लेकिन
अच्छा, टैक्सी एजेंसी की ज्यादा इज्जत है यहाँ की?
जाहिर है।
तो फिर काम क्यों नहीं करते हो? 10 मरतबा अफशार साहब से तुम्हारी सिफारिश की, वो भी अच्छे आदमी है, मान गए कि तुम यहाँ पर काम करो। बहुत खूब, जब तुम यहाँ लग गए हो तो एहसास जिम्मेदारी दिखाओ, दिल लगा के काम करो बेटा, काम करो।
किस्मत तो देखिए, जब भी आपसे काम होता है या खुशखबरी सुनाना चाहती होती है, आप किसी न किसी मसले में फंसे होते हैं या परेशान होते हैं।
जी नहीं, मेरी तबीयत ठीक है, यहाँ से उठो टूट जाएगा ये, पता नहीं मैंने इसको कहाँ रख दिया। तुम अपनी अच्छी खबर सुनाओ, शायद हमारी हालत बेहतर हो जाए।
अबू ये हुई ना बात, आपने एक वादा किया था, अब अमल करना पड़ेगा।
कैसा वादा?
कामरान और बीजन वाली बात।
वो तो बेटे इस सिलसिले में लगा हुआ हूँ, जाने फाइल ये कहाँ रखती है।
नहीं मेरा मतलब है जरा तेजी से करें। अब वो बात यह है कि महसा के वालिद ने कहा है कि इस जुमेरात को उनके घर जाएं।
अरे वाह भाई, बहुत बहुत मुबारक,
बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपकी शादियों में सब कुछ डट के काम।
ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं बेटे, ये लड़की अभी से तुम्हारी फैक्ट्री और जेब के पीछे लगी हुई है, तुम्हें यकीन है कि अच्छी बीवी साबित होगी?
अबू खुदा के लिए इस मामले को ख़त्म करें और छोड़ दें, 10 दफ़ा आप तक इस मामले पर बातचीत कर चुके हैं, मैं भी 20 बार कह चुका हूँ कि महसा वही लड़की है जिसे मैं चाहता हूँ।
ये बैग तुमने यहाँ रखा था?
जी हाँ।
अभी अफशार साहब को मुझसे काम है, तुमने खुद सुना, घर जा के बात करेंगे। मेज पर मत बैठो।
यानी जो बातें मैंने की उसका जवाब देने के लिए इतना सोचने की जरूरत है?
तो क्या तुम तो मेरे जवाब की मुंतजर हो?
तो और क्या, तुम्हारे पास आई हूँ ताकि कुछ पुरसुकून हो जाऊँ।
अच्छा तो पुरसुकून रहो, ये सब बातें जो तुमने की ये कोई नई बात नहीं, मैं जब से तुम्हें जानती हूँ ऐसी ही थी, इस कपड़े से लेकर जो तुम खरीदना चाहती थी और उन्होंने नहीं दिलाया अब तक कि तुम बड़ा घर लेना चाहती हो। बाहर तुम्हें अपने अबू की हैसियत देखनी चाहिए, लेकिन अफसोस तुम नहीं देखती हो।
आखिर कब तक ऐसा चलेगा? मेरा दिल चाहता है इस तरह जिंदगी गुजारूं जैसे मैं चाहती हूं, इस तरह नहीं जैसे मेरे माँ बाप चाहते हैं।
उठो उठो, ज्यादा मत सोचो, हमें रात की पार्टी के कपड़ों के बारे में सोचना है, तुम्हें भी तो बुलाया गया है। क्या है, आज भी नहीं जाओगी क्या?
नहीं क्यों नहीं आऊंगी, صرف یہ بتاؤ نگین، میں آج رات یہیں تمہارے پاس رہ سکتی ہوں؟
ہاں اگر دیر لگی تو کیوں نہیں؟
نہیں، میں کچھ دن گھر نہیں جانا چاہتی.
گھر نہیں جاؤ گی تو پھر کہاں جاؤ گی؟
یہاں تمہارے پاس رہوں گی.
یہ گھر نہ جانے کا کیا مطلب ہوا؟
تم سمجھتی کیوں نہیں ہو، میں اس گھر اور اس میں رہنے والوں سے اکتا گئی ہوں، اپنے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا.
لیکن بہاری یہ بالکل غلط بات ہے.
میں یہاں رہ سکتی ہوں یا نہیں؟
کیوں نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے. صرف کیا تم نہیں سمجھتی شہرام کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ابھرے گا؟
نہ پارٹی میں آؤں گی اور نہ ہی یہاں رہوں گی.
کہاں جا رہی ہو بہارے؟
کیا جناب، اب تم وہاں بیٹھ کے گلے گاؤ زبان پی رہے ہو اور مجھے گھر کے دیکھ رہے ہو، یہ پتا کر سکو کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں ہے نا؟ تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ بیچارہ بیوی بچوں والا ہے، مشکل میں ہے، اس کے اخراجات کمر توڑ ہیں، یہاں میرے پاس آیا ہے کہ کام کر کے مہینے کی پہلی تاریخ کو ایک دو کوڑی پیسے کما کے زندگی کے اخراجات پورے کر سکے، ہے نا؟ یہی سوچ رہے تھے نا؟ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے زیادہ ذہین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باتیں میں نے خود تم سے کہی ہیں اور طیبہ بھی جانتی ہے.
لیکن جیسا تم کہہ رہے ہو ویسا نہیں ہے. تم یہ سوچ رہے تھے کہ میرے اکاؤنٹ میں 4 ملین ہیں، ان میں سے 3 ملین تمہیں قرضہ دے دوں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ نہیں، میرے اکاؤنٹ میں 6 ملین ہیں، ان میں سے 5 ملین تمہیں قرضہ دے سکتا ہوں.
اعلیٰ صاحب، میں 100 ملین قرضہ لے رہا ہوں، آپ کو بتایا تو تھا کہ سالم میں ہو. مجھے 100 ملین لینے دو، نیما کے ساتھ فیکٹری لگانے دو، حالات اچھے ہو جائیں گے، تب تمہاری بھی مدد کر سکتا ہوں. کیا یہ چھوٹی سی جگہ، تمہیں بڑا سٹور لے کے دوں گا، اس کے اوپر تم لکھنا آلہ اینڈ کمپنی.
لیکن ان 5 ملین کی تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے. پتہ ہے کیا ہے، تم زندگی میں ہمیشہ حساب کتاب کے پیچھے لگے رہے ہو، اسی لیے اکاؤنٹنگ کی تعلیم حاصل کی ہے. لیکن تمہارے حساب کتاب کبھی صحیح نہیں ہوتے، تم اپنی زندگی میں پیسوں کے ہاتھوں اسیر ہو.
آخر پیسے کس لیے ہوتے ہیں؟ اس لیے ہیں کہ انسان آرام سے رہے. پیسے خرچ کرتے ہیں تاکہ بیوی بچے آرام سے رہیں، تم خود آرام سے رہو، اور پھر جب تمہارے بیوی بچوں کو آرام مل گیا تو تم آرام سے بے فکر ہو کر اپنی چائے پی سکتے ہو.
بالکل میری طرح. تم کیوں لقمے کو سر کے پیچھے سے دبا کر منہ میں رکھتے ہو؟ میں نے نہ ایسے کام کیے اور نہ کروں گا. اس وقت بھی میں نے آرام سے پاؤں پہ پاؤں رکھے ہیں اور زندگی گزارنا ہوں. ہٹ جاؤ، مجھے اس مشین پہ کام ہے.
جی اچھا استاد، آپ ہیں.
سیب لے لو، کیلے لے لو، سیب لے لو، سیب لے لو، کیلے لے لو، سیب لے لو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تھینک یو امی. امی آپ کہاں ہیں؟
کیا ہے؟ یہاں ہوں.
پیسے پیسے چاہیے.
وعلیکم السلام.
نیچے ٹیکسی والا منتظر ہے.
کتنے پیسے؟
10,000 تومان.
تم آج پیسے لے کے نہیں گئی تھی کیا؟
ختم ہو گئے، آج میں ادھر ادھر بہت.
پرائیویٹ ٹیکسی؟
کوئی حرج ہے؟
سلام.
علیکم امی.
کیا ہے؟
ایک منٹ نل کو بند کریں.
کام ہے مجھے.
اچھا بھائی، مجھے بھی آپ سے کام ہے. میرا اس گھر میں کوئی حق ہے یا نہیں؟
کیا بات ہو گئی؟
میرے کمرے میں وہ کون ہے؟
سامانہ کی شاگرد ہے.
तुम्हें मालूम नहीं कि हर हफ्ते में 2 मरतबा क्लास होती है?
ये मेरा जाति कमरा है या नहीं?
ये तुम्हारा और समाना का कमरा है। इस वक्त समाना की स्टूडेंट वहाँ है।
ठीक है, आई हो। मैं भी थकी हुई हूँ, अपने कमरे में लेटकर आराम करना चाहती हूँ।
बहारे, ये तुम्हें क्या हो गया है?
कुछ नहीं।
क्यों नहीं, कुछ तो है। समाना बेटा।
जी अम्मी।
बेटी, एक मिनट के लिए बाहर आओ।
जी अम्मी।
मेरा बच्चा, अपने स्टूडेंट को लेकर हमारे कमरे में चली जाओ। बाहर एक कंप्यूटर पर काम करना चाहती है।
ऐसा नहीं हो सकता।
जी हाँ, आप इनकार कर सकती हैं। जाहिर है आपका अपना कमरा है, आपका इख्तियार है।
बाहर है। समाना बेटे, जाओ हमारे कमरे में उसे ले जाओ। जाओ जल्दी।
चलो ठीक।
ट्यूशन से मिलने वाले पैसे कितने हैं कि इतना बर्दाश्त करें कि जो ना जानता हो वो ये सोचेगा कि हमारी गुजर बसर इसी पैसों से हो रही है।
बाहर है, कोई आया हुआ है घर में, इसका ख्याल तो करो। माफ करना, माफ करना बेटी। आइए, तशरीफ लाइए। क्या आपका कमरा है?
जनाब, मेहरबानी करके आप थोड़ी देर बैठिए, मैं अभी तैयार करता हूँ।
शुक्रिया।
बैठिए।
हेलो, सलाम अलैकुम अम्मी। नहीं, ये बताने के लिए फ़ोन किया कि रात खाना ना बनाए। अच्छा, अगर बना दिया है तो कल के लिए रख दें। आज रात आप हमारी दावत खा लें। नहीं नहीं, आ रहा हूँ ज़रूर। फ़िलहाल खुदा हाफिज़। अम्मी, सामान है, बाहर है। कहाँ हैं आप लोग? अरे मैं खाना लेकर आया हूँ, खाना लेकर आया हूँ। मेज भी सेट नहीं किया।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम
अस्सलाम।
क्या बात है, क्या शादी का खाना लाया जो इतना हंगामा कर रहे हो?
वाह वाह, मेरे बेटे ने क्या किया? क्यों तुमने इतनी तकलीफ की बेटा? अपने सारे पैसे
खर्च कर। मैं तो देख रहा हूँ आप लोगों ने मेज भी लगा के रख दी।
अच्छा ठीक है, तंज ना करो बेटी, जाके उन प्लेटों को लेकर इधर आओ, मैंने इस तरफ लगाई है।
अरे वाह वाह, मैं कुर्बान जाऊँ अपने बेटे पे, कमाने वाला बन गया है। मेरा हिस्सा लिया है?
जी हाँ, अबू के लिए खुसूसी बाखला पुलाओ।
बहुत अच्छा किया।
तैयबा बेगम, मैं जमीन पर बैठकर बाखली पुलाव खाऊंगा, माफ करना, मुझे ऐसे ही पसंद है।
बहुत अच्छा भाई, मेरा बेटा खाना लाया, तुम मिल बैठ के खाएंगे।
तो ठीक है, तो आप लोग भी वहीं आ जाएं, ठीक है? दस्तरखान बिछा भी दो ना, आ जाओ ना।
आ रहे हैं, आ रहे हैं।
कबाब ना गिर जाए।
भाई गिरे नहीं,
कबाब ना गिर जाए।
तुम हटो इधर, हटो इधर।
जी अब्बू।
अच्छा भाई, तो अच्छी खबरें पहले अब्बू को सुनाई जाती हैं।
बहरहाल कुछ भी हो, हमारे वालिद हैं, हमारे बुजुर्ग हैं।
पुरानी कहावत है ना कि सलाम भी बगैर मतलब के नहीं होता।
एक बागली पुलाव लाया, मंसूबे पता नहीं कितने।
अच्छा अच्छा ठीक है,
ये चम्मच देना
लो।
हाँ, बहारे को बुलाओ।
बहारे, खाना?
खाना नहीं खाऊंगी, पेट भरा हुआ है।
आप ही जाओ
प्लीज, मुझे दोबारा ना बुलाएं।
अच्छा देखो, उसको क्या पसंद है, अलग करके फ्रिज में रखते हैं।
कुविदा कबाब की शौकीन है नीमा, कुछ कुविदा अलग करके रख लो।
ठीक है।
अच्छा तो अब हम कब रिश्ता लेके जाएंगे?
जुमेरात को।
इसी जुमेरात को?
हाँ।
पहले बता देते तो हम कोई कपड़ा वगैरह तैयार कर लेते।
अरे भाई, रिश्ता मांगने जाना है, शादी थोड़ी हो रही है और इतने अरसे के बाद उन्होंने बुलाया है तो।
सच सच बताओ कि तुमने हालात अपने सब महसा को बता दिए हैं?
सब कुछ, बचपन की सारी हरकतों के बारे में बता दिए।
देखो हम ये बता दें कि हम आहंगी पहले से हमें करना होगी कि उनको क्या बताना है, किस तरह प्रोग्राम तय होगा, निकाह शादी की तकरीबात वगैरह, और जहाँ तक हो सके उनसे कुछ मोहलत लेनी है। बेकार के वादे वईद भी ना करना कि बाद में हम लोग फंस जाएं।
क्यों फंसेंगे, खुदा का शुक्र कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है। मैसा का भी मसला हल हो गया है, मुझे कर्जा भी मिल जाएगा, बीजन और कामरान भी तब तक मेरे मुंतजर रहेंगे। और हाँ अबू, वो कब आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे?
बेटा ये सब बाद में देखा जाएगा, तुमने अभी तक मुझे कोई सही जवाब नहीं दिया है।
अबू खुदा के लिए बातों का वक्त नहीं है, मैसा बहुत अच्छी लड़की है, उसकी नज़रें मेरी वर्कशॉप पर नहीं है। صرف اس کے والد چاہتے ہیں، صرف مطمئن ہونا چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا مستقبل محفوظ ہے. اگر آپ ذرا جلدی کریں اور جلدی اس پیسے کا بندوبست کر لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. بس یہی دیکھیں، اگر میں اگر بہت ہوا تو 10 کروڑ کے سلسلے میں جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے کامران اور بیژن کو 1 مہینے تک روک سکتا ہوں. اگر میں نے اقدام کرنے میں دیر کر دی تو مجھے پتا ہے پارٹنرشپ اور سب کچھ بکھر کر رہ جائے گی، وہ کسی اور کے ساتھ مل جائیں گے. تو اس وقت یہ کمپنی ہوائی قلعہ ثابت ہوگی کہ جس کی بنیاد پر میں نے اپنی زندگی استوار کی. شادی کرنا چاہتا تھا کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟
یہ باغلی پلاؤ جو تم لے کے آئے ہو اس کو سکون سے کھانے دو، یا میرے حلق سے نیچے اتر جائے تو بعد میں بات کریں گے.
اس گھر میں بالکل بھی ایسے پیسے نہیں ہیں، اگر آئے بھی ہیں تو اکیلے اکیلے تمہارے نہیں سب کے ہوں گے.
یہ بات کرنے کا کون سا طریقہ ہے بیٹی؟ ہم سب ایک ہی گھر کے افراد ہیں، وہ ورک شاپ بھی سب کی
نہیں ہے. ہم نہیں ہیں، آپ اپنی اولاد میں فرق رکھتے ہیں. مجھے اگر وہ فیکٹری نہ چاہیے تو کیا کروں؟
بہارے
امی جان، آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ بھی ایسی ہیں، لیکن اس مرتبہ میں اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گی.
بس نہیں کرو بہارے، بڑی ہو گئی ہو، 25 سال کی ہو گئی.
چونکہ بڑی ہو گئی ہوں اس لیے کوئی بات نہ کروں، اپنی زندگی کے لیے کچھ بھی نہ کہوں.
تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ کیا طریقہ ہے جو تم نے اپنایا ہے؟ ہم کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، تم بیچ میں کود پڑی، کہنا کیا چاہتی ہو؟
ابو آپ اپنا کھانا کھائیں، اس طرح کی بحثیں تو ہمارے گھر میں کوئی نئی بات نہیں ہے.
لیکن آپ لوگ ہمیشہ ایسا کام کرتے ہیں، ایسا رویہ اپناتے ہیں کہ کسی کو
ٹھیک ٹھیک ٹھیک
آج تمہیں ہوا کیا ہے؟ مجھ سے بتاؤ، اپنے ابو سے بتاؤ، کیا مطلب کیا ہے تمہارا؟ چلا کیوں رہی؟ کیوں اس طرح بیچ میں کود پڑی؟ تو
ایسا لگتا ہے کہ میں اس گھر کے ساتھ علی بیٹھی ہوں، جو کچھ ہے ان لوگوں کا ہے، جو نیما چاہتا ہے آپ وہی کرتی ہے. لیکن اب میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، میں اپنا حق کا دفاع کروں گی، میں اپنا حق لوں گی. کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ کیا مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے؟
بہاری رو کیوں رہی ہو؟ تمہارے لیے پانی لے کے آؤں؟ کیوں اتنا لالچ کر رہی ہو؟
پتا ہے میرا دل کیوں اتنا جل رہا ہے؟
نیما کی ورک شاپ کے لیے،
اپنے اس لاڈلے کے لیے اتنا خرچہ کرتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، اور جب میری باری آتی ہے تو اپنا کیلکولیٹر سامنے رکھ کر حساب کتاب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس بیچ میں اضافی ہوں، چھوڑ کر چلی جاؤں گی نا تو ان کو حساب کتاب پتہ چل جائے گا.
فضول باتیں مت کرو، یہ سب بچگانا حرکتیں
ہیں. ہاں میں بچی ہوں، میں بالکل بے وقوف ہوں، اسی لیے تو اس گھر کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں.
بہارے تھوڑا ابو
سمانا، اب تم مجھے نصیحت مت کرو.